फारसी साहित्य का अनमोल रत्न।
दोस्तों, कार्यक्रम फारसी साहित्य का अनमोल रत्न की एक नई श्रृंखला के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, इस कार्यक्रम श्रृंखला में हम ईरान के एक महान साहित्यकार निज़ामी के विचारों, कार्यों और साहित्य पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ईरान एक बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ पर हजारों साल पहले संस्कृति विकसित हुई। ईरान के फारसी भाषा के साहित्यकारों और कवियों ने शताब्दियों से दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। उन्होंने ऐसे विचार पेश किए जो स्वयं में अद्वितीय है। वे महापुरुष जिन्होंने ईरान की संस्कृति को समृद्ध जड़ों को पूरे देश में फैलाया, उनको आज विश्व बहुत ही अचरज से देखता है। महाकवि फिरदौसी की शुद्ध भाषा, मौलवी के उच्च विचार, निज़ामी की कल्पनाशील कहानियाँ, खय्याम की दार्शनिक यात्राएँ, हाफिज़ का असीम प्रेम, सादी और नासिर खुसरो की बुद्धिमानी जैसी विशेषताएं ईरान की भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए फारसी भाषा के साहित्य प्रेमियों के दिलों तक पहुंच चुकी हैं। इतिहास हजारों साल पुरानी इस समृद्ध संस्कृति का साक्षी रहा है। इस संस्कृति ने अपने पूर्वजों और विचारकों की पहचान, गोपनीयता एवं पवित्रता को सुरक्षित बनाए रखा है।
जिस प्रकार से देशों को उनकी सीमाएं अलग करती हैं, उसी प्रकार से विश्व के विभिन्न राष्ट्र राष्ट्रीय संस्कृति की सीमाओं से अलग होते हैं। सांस्कृतिक धरोहरों को हर राष्ट्र की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है। इनकी सुरक्षा करना एक प्रकार से देश के इतिहास और उनकी संस्कृति की रक्षा करने के अर्थ में है। इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से ईरान एक बहुत ही प्राचीन देश है। बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि इंसान ने पहली बार ईरान की धरती पर जीवन गुजारना शुरू किया था। उनका यह भी कहना है कि ग्रामीण जीवन का चलन भी यहीं से आरंभ हुआ था। ईरान दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसका अतीत बहुत ही प्राचीन एवं उज्ज्वल रहा है। इसका इतिहास कम से कम 5000 साल पुराना है। एक समय में ईरान का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। ये देश दुनिया में इतिहास का निर्माण करने वालों में से एक है। उस काल के बहुमूल्य प्रमाणों और कृत्यों ने मानव सभ्यता के ज्ञान में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सलीबी युद्ध या क्रूसेड वार से यूरोप एशिया से निकट हुआ। इसने भूमध्य सागर के पूर्वी तटों तक यूरोपियों के लिए रास्ते खोल दिए। अब्बासी साम्राज्य के विघटन के बाद बहुत से कारवां एशिया की ओर आने लगे, जिनमें पोप द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल और यूरोपीय व्यापारियों के गुट भी शामिल थे। इसी के साथ ईसाई मिशनरीज और प्रचारकों के साथ ही व्यापारियों ने ईरान का रुख किया। ईरान में सफवी शासन काल की स्थापना के साथ ही देश में ये नई नीति निर्धारित की गई कि उस्मानी साम्राज्य से मुक्ति हासिल करने के लिए कोई स्वतंत्र रास्ता अपनाया जाए, जो स्वयं को मुसलमानों का खलीफा समझते थे। इस नीति ने यूरोपियों के दृष्टिकोण को ईरान की ओर मोड़ दिया, क्योंकि वे उस्मानी तुर्कों से लगातार युद्ध में थे। इस नीति के अपनाए जाने के साथ ही ईरान की ओर यूरोप से व्यापारियों के धार्मिक प्रतिनिधि मंडलों की एक बाढ़ सी आ गई। ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, रूस, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने ईरान के साथ संबंध बनाए। इसके बाद इन देशों के प्रतिनिधियों ने ईरान के बारे में अपनी अपनी रिपोर्टों को अपने देशों को भेजा।
काजर शासनकाल में ये संबंध अधिक विस्तृत हुए। इसका नतीजा ये निकला कि तेहरान में कई यूरोपीय देशों के दूतावास एक के बाद एक करके खुलने लगे। इसी के साथ यूरोप से व्यापारियों, पर्यटकों और राजनेताओं ने ईरान आना शुरू किया। यहाँ पर आने के बाद यूरोप वासियों को ईरान के प्राकृतिक सौंदर्य का आभास हुआ। उन्होंने यहाँ पर अलबोर्ज और ज़ाग्रोस पर्वतों की सुंदरता, कैस्पियन सागर और फ़ारस की खाड़ी के आकर्षक तटों और कई पवित्र स्थलों के अतिरिक्त बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का पता चला। उन्होंने ईरान में मूल्यवान आध्यात्मिक एवं भौतिक संपत्ति को निकट से देखा। ये वे चीज़ें हैं जो ईरान को एक बहुत ही महान एवं समृद्ध देश बनाती हैं।
सबसे पहले आगंतुकों या बाहर से आने वालों ने ईरान की भौतिक संपत्ति पर नज़र डाली। ईरान की भौतिक संपत्ति को देखकर वे लालायित हो उठे। सन 1958 में ईरान के नकदे नगर की खुदाई के दौरान सोने का एक प्याला या कटोरा निकला था। सोने का ये प्याला तप्पे हसनलू नामक क्षेत्र में मिला था। इसका संबंध 6000 वर्ष ईसा पूर्व से बताया गया। सोने के इस प्याले पर एक बैल की तस्वीर है जिसके पर दिखाए गए हैं। खुदाई में इसके अतिरिक्त भी कई अन्य बहुमूल्य धरोहरें मिली हैं। इस तरह से ईरान के सांस्कृतिक धरोहरों के लूटे जाने का क्रम आरंभ हुआ। ईरान में मुजफ्फरुद्दीन के शासनकाल में नेहावंद के एक तहखाने से ख़जाना मिला जो शायगान के नाम से मशहूर है। पार्थियन और सैसानियन काल की बहुत सी मूर्तियां और उत्कृष्ट वस्तुएं अवैध ढंग से ईरान से बाहर ले जाई गईं, जिनमें बहुत सी सोने और चांदी की सिलें भी थीं।
ईरान में 19वीं शताब्दी के आरंभ में काचार काल के आरंभ होने के साथ ही बहुत से यूरोपीय पर्यटक ईरान की बहुत सी सांस्कृतिक धरोहरों से अवगत हुए। पहली बार सन 1267 हिजरी कमरी में लुफ्टुस ने मिस्टर चर्चिल और मिस्टर विलियम के सहयोग से ईरान प्राचीन शूश क्षेत्र के खंडरों पर खुदाई का काम आरंभ किया। उसके बाद नासिरुद्दीन शाह की अनुमति से फ्रांसीसी नागरिक डुलाफो ने शूश में खोजी कार्य करने की अनुमति हासिल की थी। इसके बाद जैकोब डी मोर्गन ने ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में धरोहरों को खोजने के उद्देश्य से खुदाई के काम किए।
उसने शूश में खुदाई के काम पर लगभग 1200 या 1200 लोगों को लगवाया था। वो हर 18 महीने के बाद धरोहरों को लेकर फ्रांस जाया करता था। ये काम पूरा करने के बाद जुलाफो ने ईरान से लूटकर ले जाई गई कलाकृतियों की पेरिस में एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। इस प्रदर्शनी में विश्व के महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों में से एक लौहे हमराबी या कोड ऑफ हमराबी भी था, जो बेबीलोनियन साम्राज्य पर ईरान की विजय का परिचायक था। पेरिस के लोवर संग्रहालय में रखी गई धरोहरों में इसको आज भी सबसे महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में देखा जाता है।
फ्रांसीसियों ने ईरान से मूल्यवान धरोहरों को अपने देश ले जाने का क्रम बाद में भी जारी रखा। उसके बाद यही काम ब्रिटेन ने भी शुरू किया, लेकिन इनमें सबसे अधिक लूटपाट अमरीकियों ने की। अमरीकियों के हाथों ईरानी धरोहरों की लूट का सिलसिला ईरान में पहलवी शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच चुका था। जब ईरान में इस्लामिक क्रांति सफल हुई तो सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में एक कानून बनाया गया, जिसके बाद इन धरोहरों को लूटकर विदेश ले जाने का क्रम रुक गया।
ईरान में जब इस्लामिक क्रांति सफल हुई तो क्रांति की परिषद ने देश के भीतर हर प्रकार की व्यापारिक एवं वैज्ञानिक खुदाई अर्थात प्राचीन धरोहरों को निकालने पर रोक लगा दी। इनके खरीदने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि आज भी बहुत से विदेशी लालच भरी नज़रों से ईरान की सांस्कृतिक धरोहरों को देखते हैं। वे हमेशा ही इस मौके की तलाश में रहते हैं कि इस देश की धरोहर को वे यहाँ से बाहर ले जाएं।
बड़े खेत की बात है कि कुछ देश आज भी ईरान के आध्यात्मिक धरोहरों को अपने नाम करने के प्रयास कर रहे हैं। वे व्यक्तित्व जो हमेशा से ईरान के इतिहास का भाग रहे हैं और जिनको पूरी दुनिया ईरानी होने के नाते जानती है, उनको अब कुछ देश अपना बनाना चाहते हैं। कवियों, साहित्यकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों की गणना किसी देश के आध्यात्मिक धरोहरें होती हैं। ईरान में ऐसे बहुत से कवि, साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीवी और लेखक पैदा हुए हैं जो वर्षों से ईरानी होने के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु कुछ भौगोलिक परिवर्तनों के कारण वे इस समय ईरान की भौगोलिक सीमा से बाहर हैं। इसी प्रकार महान लोगों में से एक ईरान के अति प्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात साहित्यकार निज़ामी भी हैं।
आज़रबाईजान गणराज्य की सरकार लंबे समय से ईरान की कुछ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहरों पर अपना लेवल लगाना चाहती है। हालांकि ये बात याद रखनी चाहिए कि वर्तमान समय का आज़रबाईजान गणराज्य विगत में ईरान के भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। संसार का साहित्य निज़ामी को क्लासिकल फारसी के एक स्तंभ के रूप में जानता है। निज़ामी ऐसे कवि थे जिनको ऐसे कथाकार तथा रोमांटिक कविताएं तथा महाकाव्य लिखने वालों के रूप में देखा जाता है जिनकी रचनाएं हाफिज़, सादी और मौलाना की साहित्यिक रचनाओं के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।
बहुत से ओरिएंटलिस्ट ने सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहरों के लूटे जाने का कड़ा विरोध किया है। हार्चिक सिमोनियन ने श्रीमती अरमानोश कजुमियान के साथ मिलकर, जो फारसी साहित्य के अच्छे जानकार रहे हैं, ईरानी साहित्यकार निज़ामी के बारे में किए जाने वाले काम की ओर लोगों के ध्यान को आकृष्ट किया है। पूर्व सोवियत संघ के एक विद्वान मिखाइल कापुस्तीन ने सन 1988 में एक लेख लिखा था। अपने लेख में उन्होंने ये बताया था कि निज़ामी गंजवी मध्ययुग के एक महान विचारक और कवि रहे हैं। वे फारसी साहित्य के गणमान्य लोगों में माने जाते हैं। ऐसे में निज़ामी गंजवी का कोई भी संबंध आज़रबाईजान के साहित्य से नहीं है। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अगले भाग से हम आपको निज़ामी गंजवी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।